ओम शांति। राजयोग की प्रयोगशाला की आज तीसरी कड़ी है। राजयोग हमारे ब्राह्मण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का परिवर्तन होता है, संकल्पों का परिवर्तन होता है। संबंधों में, रिलेशन में जब हम आते हैं तो हमारी व्यवहारिकता में चेंज आती है, प्रकृति का परिवर्तन, सृष्टि का परिवर्तन। आज की मुरली में भी बहुत सारी बातें याद से संबंधित है, बहुत सारी उसमें विधियाँ बताई हैं, अलग अलग तरीके से हमारी याद कैसे जुटी रहे और उसमें कौन कौन से ऑब्स्टेकल आते हैं, विघ्न आते हैं, वो भी बाबा ने बताया है, और उन विघ्नों को कैसे पार करना है वो भी विधियाँ बताई हैं। तो सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट है, सुप्रीम साइंटिस्ट शिव बाबा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जो हम सबको एक सूक्ष्म रूप से कर्म क्षेत्र पर कैसे राजयोग का प्रयोग करना है, हम सबको एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाने की शिक्षा देते हैं। संकल्पों की प्रयोगशाला जिसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ स्थूल में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे बाबा ने आज कहा कि संसार में तो उन्होंने हिंसा दिखा दी है, हथियार वगैरह, लेकिन तुम्हारी है गुप्त लड़ाई। तो हमारे संकल्पों के हथियार भी गुप्त हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। तो सारे दिन की दिनचर्या में हम कैसे इस मुरली को, जो शुरुआत की है राजयोग की प्रयोगशाला, कि कैसे हम कर्म क्षेत्र पर इस मुरली को हम राजयोग में तब्दील करें, याद की यात्रा हमारी निरंतर बनी रहे, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके, कुछ नवीनता होती रहे, उमंग उत्साह कायम रहे, कुछ नई नई अनुभूतियाँ होती रहें, जो हमारे समन संपर्क में आने वाले हैं उनकी भी मेंटालिटी चेंज होती रहे, उनको भी कुछ अनुभूति हो। कैसे वो हमें देख कर ही, जैसे बताया, कोर्स कराने से नहीं बल्कि हमारी चाल चलन से कुछ वो सीख जाए। तो हम कुछ बातें देखेंगे, मुख्य रूप से 10 बातें हैं इस मुरली से। वैसे तो बहुत सारी बातें थी, 20-25 निकाली, लेकिन 10 हमने सिलेक्टेड की, उसमें सेलेक्ट की हैं, जिसको हमको सारे दिन में प्रैक्टिकल में करना है। तो सबसे पहले ब्लेसिंग योगा। इस मुरली में बहुत सारे वैसे टाइटल हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने 12 टाइटल का चयन किया है, जिनका हमको महसूसता करनी है, जिनकी कि वो वरदान स्वयं भगवान हमको दे रहा है और उनकी फीलिंग में रहना है, महसूसता करनी है, उन पर चिंतन करना है, कुछ दृश्य इमर्ज करने हैं उनके प्रति, तो पहला है ब्लेसिंग योगा। वो 12 कौन से है वो भी हम आगे बढ़ेंगे तो उस पर प्रकाश डालेंगे। और दूसरा है दृष्टि योगा, और तीसरा है डेथ योगा, मृत्यु, जीतते जी मृत्यु, और चौथा है ईटिंग योगा, और पांचवा है एकांत योगा, छठा है ऑफिस योगा जो मुरली में है आज के, नेक्स्ट है रिलेशनशिप योगा, मीटिंग योगा, वॉकिंग योगा, कितने नाव हो गए, राइटिंग योगा, लास्ट में राइटिंग योगा। हाँ जी चालू है राइटिंग योगा, चालू है, जारी है। वैसे बहुत सारे है, स्लीपिंग योगा है, टॉकिंग योगा, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे योग वो भी आ जाएंगे, उनको भी हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले है ब्लेसिंग योगा, जो कि हर ब्राह्मण आत्मा अमृत वेले उठते ही उसका अनुभव करती है, उसको दोहराती है, महसूस करती है कि भगवान कैसे वरदान दे रहे हैं। तो अभी हम इसमें 12 टाइटल हैं जो इस मुरली से चयन किया गया उनका, तो वो हम महसूस करेंगे कमेंट्री के माध्यम से भी, 2-5 मिनट में इसका अनुभव करेंगे सभी। और सारे दिन में जो जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पर रहते हैं, चाहे वो कर्म क्षेत्र पर हैं, चाहे घर में रहते हैं, ऑफिस में हैं, या ट्रैवलिंग में हैं, तो सारे दिन में जो भी आज विधियाँ हैं इनको हम उपयोग करेंगे और उनका अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लेसिंग योगा, महसूस करेंगे सीधा सूक्ष्म बतन में, बाप दादा के सम्मुख मैं पहुंच गया हूं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखने से ही मेरी काया संपूर्णतः प्रकाशमय हो गई है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे स्पिरिचुअल लाइट हाउस में, बच्चे बाप समान विश्व कल्याणकारी में, बच्चे मास्टर बीज रूप का, सुदर्शन चक्करधारी बाबा, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाबा, बाप समान रहम दिल बहे, संपूर्ण पवित्र आत्मा बहे, अशरीरी बहे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी भव, बेहद के बैरागी बाबा, बाप की संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी बाबा। एकांतवासी भव, बाप को अपना संसार बनाने वाले विशेष आत्मा भव। दूसरा युग है दृष्टि युग। इसमें भी बाबा ने आज कहा निष्ठा की बात की है। तो निष्ठा का बाबा ने जो पहले जिक्र किया था कि पहले बहन बैठती थी, आगे निष्ठा कराती थी, तो अभी हम स्वयं से ही निष्ठा का अनुभव करेंगे। जैसे कई दफ़ा दादी जी के भी प्रवचनों में सुना है कि दादी जी स्वयं को दृष्टि देते थे, तो बहुत अच्छा एक योग का प्रयोग है कि स्वयं को स्वयं ही दृष्टि देनी है। तो सभी आंखें बंद करके यही अनुभव करेंगे, म्यूजिक चलाएंगे, कि मेरा संपूर्ण रूप, फरिश्ता रूप मेरे सामने है और वो संपूर्ण रूप मुझे दृष्टि दे रहा है, मुझे संपूर्णता की तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, मेरा ही रूप मुझे ही दृष्टि दे रहा है। मेरा देवताई स्वरूप मुझे दृष्टि दे रहा है। इमर्ज करेंगे कि मेरा संपूर्ण देवता स्वरूप मेरे सामने खड़ा है, सिर पर ताज, लाइट का ताज, प्योरिटी का ताज, पतंजलि ताज, मेरा ही स्वरूप मेरे सामने है। आंखों से दृष्टि निरंतर उस संपूर्ण देवता इस रूप से निकल कर मुझ में आती जा रही है। मैं संपूर्ण देवता इस रूप का अनुभव कर रहा हूं। स्वर्ग के सब संस्कार, राजाई के संस्कार, वो दैवी चाल चलन के संस्कार, उनकी महसूसता कर रहा हूं। फिर दृष्टि योग में दो और पार्ट हैं। एक है बाबा से दृष्टि लेना, जो कि हम सारे दिन में बीच बीच में कर सकते हैं। बार बार बाबा का आह्वान करना, बाबा से दृष्टि लेना, और दूसरी बात है पूर्वजों से दृष्टि लेना। और पूर्वजों से दृष्टि का महत्व तब महसूस होगा जब हम उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अगर बिना हिस्ट्री जाने दृष्टि लेते तो उसका उतना महत्व नहीं महसूस होता है, इसलिए उनकी हिस्ट्री पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो उनके जीवन की त्याग, तपस्या, सेवा की भाग दौड़, वैराग्य, उनके जो चरित्र हैं, इतने उच्च कोटि के चरित्र, इतनी परिस्थितियों का सामना किया हुआ है, तो वो संपूर्ण मूर्ति हैं जो पूर्वज हैं हमारे, तो उनके बारे में पढ़ते पढ़ते जैसे महसूस होगा जैसे हमारी आंखों के सामने वो घूम रहे हैं, तो वो भी एक बहुत शक्तिशाली अनुभूति होती है। एक सुरक्षा कवच की तरह हम पूर्वजों को सामने रखेंगे कि हम बीच में बैठे हुए हैं और सब पूर्वज बारी बारी मुझे दृष्टि दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी अनुभूति की जा सकती है। और उन पूर्वजों को एक और भी महसूस कर सकते हैं, जैसे जिस घर में हम रहते हैं जिस भी स्थान पर, उस घर को परिक्रमा दे रहे हैं वो, और उस घर की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है समाप्त हो रही है, चाहे वो ज्ञान में कोई नहीं भी चल रहा है, चाहे कोई संबंधी है, चाहे कोई हमको विघ्न डाल रहा है, तो उन पूर्वजों की परिक्रमा से उस सारे घर की जो नेगेटिव वातावरण है, जो भी विघ्न के संकल्प हैं, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये भी एक नया प्रयोग किया जा सकता है, पूर्वजों की परिक्रमा। तो दूसरा हो गया ये दृष्टि योगा, और तीसरा है क्या बताया था, डेथ योगा। बाबा ने कहा, देह के संकल्पों की जाल मकड़ी की जाल की तरह है, तुम्हें इसे हप कर देही अभिमानी मन बाप को याद करना है, तो इससे क्या होगा, कट उतरेगी। तो जीते जी मृत्यु का अनुभव करना है। देह के जाल जब तक हम इस देह में हैं तब तक तो वो रहेंगे रहेंगे, लेकिन जैसे हम देह छोड़ देंगे तो सब जाल खत्म हो जाएंगे। तो महसूस करना है जैसे हमारी वैकुंठी यात्रा निकाली जा रही है, अर्थात जिसको शब्द यात्रा कहते हैं, या अर्थी निकाली जा रही है ना, तो उसका अनुभव करना है। और उसमें बहुत अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि संसार से हम कट चुके हुए हैं, अब हमारा इस संसार में कोई नहीं रहा। लेकिन उससे पहले हमको सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं उनके साथ में। अगर बिना हिसाब किताब किए हमने शरीर छोड़ दिया तो दोबारा फिर से उनके आसपास ही आना पड़ेगा। उस समय सभी का योग हमारे से लगा हुआ है, और उस समय हम जो दृष्टि देंगे तो हमारे हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे। तो डेथ हो गए महसूस करना है, और इस पर थोड़ा लिखा भी जा सकता है निबंध, मेरी मृत्यु की यात्रा कितनी सुख दोगी, कितनों को सुख दे के जाएगी, किसी को दुख तो नहीं दे रही है, भले कोई हमको याद कर रहा है, भले किसी को आंसू गिर रहे हैं, लेकिन हो सके तो आंसू गिरने भी नहीं देना किसी के। तो पहले से हमको ऐसा हिसाब किताब बना के रखना है। तो तीसरा है डेथ योगा, और चौथा है ईटिंग योगा, मर के देखना फिर ये अनुभव होगा। वो एक कमेंट्री लिखी है, हमने आपको भेज देंगे, बहुत साल पहले लिखी थी मृत्यु के ऊपर, हम आपको भेज देंगे, 2 पेज की है, लीगल पेज में 2 पेज, लीगल साइज का पेज होता ना, तो वो भी हम भेज देंगे आपको। तीसरा है ईटिंग योगा, बाबा ने कहा, चौथा है ईटिंग योगा, भोजन करते, इसमें बाबा ने कहा भोजन करते भी तुम याद में रह सकते हो। तो भोजन करते इसमें हमको बहुत बड़ी जिक्र किया है यहाँ भी क्लासेस में, कैसे हम भोजन करते हैं। एक है हम स्थूल में भोजन कर रहे हैं, और दूसरा है संकल्पों का भोजन। जो भी शुद्ध संकल्प हैं, प्योर संकल्प हैं, वो संकल्प हम आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, और जो नेगेटिव संकल्प हैं वो एक विषाक्त हैं, विषैले संकल्प हैं जो हमारे शरीर में समा जाते हैं। जैसे बताया गुस्से में किया गया भोजन भी कैसा है, विषैले बन जाता है, उससे भी कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, नॉन वेज के समान है वो। तो भोजन करते समय भी हम ध्यान रखें, कम बोलें, वैसे तो बिल्कुल नहीं ना बोले, सर्वश्रेष्ठ तरीका तो यही है वैसे बिल्कुल नहीं बोलना। अगर फिर भी कुछ ऐसा सेवा का मौका आता है या कुछ बोलना ही पड़ता है, लेकिन तो हम उतना ही बोलें जितना काम का हो, और हो सके हैं जी स्पीकिंग योगा, हाँ वो बीच में आगे आएगा अभी। तो भोजन करते इसमें टेबल टॉक बंद, टेबल टॉक बंद बिल्कुल। ये भी हो सकता है जिस स्थान पर हम बैठे हैं अचानक कोई आ जाता है, समझ लीजिए हम बैठे हैं साइलेंस में, हमारे से कोई बड़ा आ जाता है और कुछ बात करना शुरू कर देता है, तो हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए उनकी बात को चेंज करने की, ताकि उसकी बात को हम योग में परिवर्तन कर दें, क्योंकि तुरंत सामने वाला बंद नहीं होता है, बोलेंगे भी तो बुरा भी मान सकता है वो, कभी कभी होता है, बाय चांस होता है, माइंड नहीं करना उसको बिल्कुल, वो भी बात ठीक है। तो कोशिश तो करनी है, कोशिश क्या, वैसे तो संपूर्ण कर टेबल टॉक बांध ही होना चाहिए, और इसमें हम प्रयास करते हैं तो सामने वाला समझ में जाता है, वैसे सामने वाला कुछ तो बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन अगर हम अपनी दृढ़ता पर कायम हैं और सुन लेते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है कि ये याद में भोजन कर रहे हैं, और उस पर असर होता है सामने वाले पर, और धीरे धीरे वो भी उस अवस्था को पहुंच जाता है। तो ये कहे भोजन हम कैसे करते हैं, उसमें भी हमारा किसी न किसी तरीके से योग जुड़ा रहे, जैसे हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर रहे हैं वो देखें, और जैसे बताया कि स्पिरिचुअल लाइट हाउस हूँ, वो हमने भगवान से वरदान ली हुआ है सवेरे सवेरे अमृत वेले, तो मैं लाइट का भोजन स्वीकार कर रहा हूँ, जो भी गिट्टी है मेरे हाथ लाइट के हैं, भोजन लाइट का है, मेरी बॉडी लाइट की है, आत्मा लाइट है, सामने बैठे लाइट हैं, टेबल लाइट का है, पानी लाइट का है, गिलास लाइट का है, थाली लाइट की है, यह शुद्ध संकल्पों से भोजन करते करते तो वो कर सकते हैं, लाइट ही लाइट हो जाएगा, लाइट के नीचे खा रहे हैं, और लाइट चली भी गई तो भी अंधकार को भी लाइट ही समझ लेना। तो लाइट का भोजन करना, पानी को दृष्टि देके भोजन कर रहे हैं, एनर्जी, हाँ जी, एनर्जेटिक, तो उसमें एनर्जी भर रहे हैं, तो पानी को खाना होता है, भोजन को पीना होता है, तो इस तरीके से अगर भोजन करेंगे तो वही हमारा एक योग पर एक नया प्रयोग हो जाएगा। धन्यवाद का भाव होना चाहिए बिल्कुल, कंप्लेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उस भोजन के प्रति। और भोजन के बारे में जो कई दफ़ा भी देखा गया है कि भोजन करते समय अधिकतर लोगों के संकल्प पिछले जन्म में चले जाते हैं, अर्थात लौकिक जन्म में चले जाते हैं, हम वहाँ ऐसे होते थे, हम ऐसे करते थे, वो जाता नहीं है देखा हमने, के हमारे उधर वो है, क्योंकि वो आइटम बनी होती है तो वो आइटम पिछले जन्म की याद आ जाती है उनको, वहाँ तो हम ऐसे बनाते थे, और यहाँ देखो बनाने नहीं आते इनको, तो इस तरह के भाव पैदा हो जाते हैं, खुशबू आते थे जलेबी में, तो बहुत सारी, हाँ उधर की आइटम इतनी अच्छी होती थी, एकदम खाने में भी अच्छी लगती थी, और इधर तो इतनी मोटी मोटी है, जाड़ा जाड़ा माना मोटी मोटी, तो ये चीज़ें जो भाव पैदा करती हैं लौकिक की, और वो देखा गया वो लौकिक भाव ना केवल खुद वो व्यक्ति सामने वाला वर्णन करता है, दूसरों को भी पिछली स्मृति में लेके जाता ला जाता है, भले हम उनको स्मृति में नहीं ला रहे लेकिन हमारे संकल्प तो चले जाते हैं ना वहाँ तक, तो उसका भी हमारा सूक्ष्म हमारे पर पाप चढ़ता जाता है। तो भोजन के समय हमको कौन सा संकल्प करने हैं, ये हम पहले से अगर मटेरियल को तैयार रखेंगे तो हम उसका प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि जब हम प्रयोगशाला में बैठते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, जार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें समय देना पड़ता है, तो पहले से हमें सारे ये मटेरियल तैयार करके रखना पड़ेगा, ताकि समय आने पर उस मटेरियल को हम अपने उपकरण में डाल सकें। तो ये चीज़ है कि भोजन करते समय हमको जी एक तो खड़े रह के खाना नहीं, दूसरा मुंह आंख और पैर धोने के बाद ही भोजन करना हर बार, तीन बार भोजन कर रहे हैं तो तीन बार हाथ पैर और मुंह, बिल्कुल। प्राचीन जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसमें बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति के ऐसे प्रावधान हैं जो कि हमारे हेल्थ को बहुत तंदुरुस्त रखते हैं, गांव में अभी तक भी वही प्रचलित है, जैसे बताया कि खड़े खड़े कभी भोजन नहीं करना है, लेकिन अभी आधुनिकता की जो पश्चिमी संस्कृति है उसका तो बोलबाला है, जैसे कोई पीछे भागा होता है उस तरह से भोजन करते हैं, या दूसरा को ख़त्म होने वाला तो भोजन करते उस तरीके से, तो खड़े खड़े भोजन नहीं करना, दूसरा बैठ के भोजन करना, और जमीन पर बैठ के करना, चौकड़ी मार के करना, और तीसरा हाथ से करना, चम्मच का उपयोग नहीं करना, हम तो आज भी हाथ से करते हैं, अगर कई गेस्ट आते हैं तो कोई VIP कुछ भी अपन तो हाथ से ही खाते हैं, तो हाथ से जो संतुष्टता का भाव पैदा होता है वो चम्मच से नहीं होता बिल्कुल भी। कुर्सी पर भी चौकड़ी मार के बैठा जाता है, क्योंकि डाइनिंग हॉल की जो कुर्सियाँ होती हैं वो बिना बाजू की होती हैं, तो उसमें चौकड़ी मारी जा सकती है अगर बैठना हो तो, कई लोग बैठते भी हैं ऐसे, हाँ चप्पल और शूज़ पहन के भोजन नहीं करना होता है, तो बिल्कुल ये तो गांव में भी हमने देखा, चूल्हा चौका डेली जो चूल्हा चौका होता था तो उसको डेली लीपा पोती होती थी, गाय के गोबर से लीपा पोती होती थी डेली उसको, वो एक वाइट कलर का लगाते थे उसमें, और वहाँ तो सारा नियम हाथ धुलाई करने, हाथ पैर मुंह सब धुलाई करके और उसके जो भोजन के थे, भोजन का जो पात्र होता है उसमें से बहुत सारा भोजन निकाला जाता है पक्षियों के लिए, गाय के लिए, और क्योंकि उनका भी महत्वपूर्ण है। वन्य प्राणी जो हैं एक फसल को भी संरक्षण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो उनका भी हिस्सा होना चाहिए, किसान का हिस्सा होना चाहिए। जो माताएं यहाँ भोजन बना रही हैं, रोटी पका रही हैं, उनका भी धन्यवाद होना चाहिए। अच्छा, जो जहाँ से आ रहा है, जिस तरीके से दान का पैसा आ रहा है, उनका भी धन्यवाद होना चाहिए। कितने प्रकार के धन्यवाद है। तो भोजन करते समय अगर हम इन सब नियमों को सामने रखेंगे तो वो भोजन है वो दुख भंजन भोजन बन जाएगा और वो हमारे कर्म इंद्रियों को शीतल कर देगा। मिर्च मसाले वाला भोजन ना हो, संपूर्ण मौन में भोजन किया हो। तो ये है भोजन, ईटिंग योगा चौथा हो गया। पांचवा है एकांत योगा, आज का वरदान है, स्लोगन। क्या स्लोगन था? बैलेंस रखो, पावरफुल अगर स्थिति बनानी है तो एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। तो एकांत रहना जो है हम सबके लिए बहुत, जो हमारी जो स्थिति है अशरीरीपन की स्थिति या इस दुनिया को भूलने की स्थिति, उसमें एकांत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हम एकांत में जाते हैं, एकांत का बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में व्यर्थ बताया, वो तो बताया था कि भीड़ के में बीच में भी एक का अनुभव करना, उसको भी एकांत। दूसरा प्रकृति की गोद में, एकांत में हम जाते हैं तो इस संसार से कट हो जाते हैं, लेकिन वो एक दो बार जाने से नहीं होता है, लंबे समय तक हम प्रकृति में रहते हैं तो उसका अनुभव किया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें ये भी हो सकता है कि कई लोग घरों में रहते हैं, कहेंगे हमको प्रकृति में जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, हम ये सोचते हैं कि महीने में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को प्रकृति में जाना चाहिए। छुट्टी तो वैसे होती है संडे की, एक छुट्टी तो होती है, डेली नहीं जा सकते, हर संडे नहीं जा सकते हैं, घरेलू काम काज भी होते हैं, लेकिन महीना में अगर हमको राजयोग, राजयोगी हमारा जीवन है, तो प्रकृति में जाना महीने में एक दिन जरूरी है। कहाँ घूम के आ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके जहाँ हम घूम रहे हैं, हम किन संकल्पों से घूम रहे हैं, हम उस कॉन्शियस में नहीं घूम रहे, बॉडी कॉन्शियस में घूम रहा, तो संकल्प तो चल रहे हैं ना कुछ, किन संकल्पों से घूम रहे हैं और किस लक्ष्य को लेकर घूमने गए हुए हैं। खाली हम वहाँ खाली को प्रकृति को देखने नहीं गए, कुछ उससे सीखने गए, कुछ पक्षियों की आवाज़ें हैं, कुछ पेड़ पत्तों की आवाज़, कुछ पेड़ पत्ते देख रहे हैं, उन पेड़ पत्तों के साथ बातें करना, उनको स्पर्श करना, हगिंग करना, उनको एकदम भाकी पहनना, तो वो सब चीज़ें जब उस प्रकृति से हम जुड़ते हैं तो हमारी जो बॉडी कॉन्शियस ना, क्योंकि बॉडी भी हमारी तो पांच तत्वों की बनी हुई है, और तो उन पांच तत्वों की शक्ति भी हमारे में समावेश होने लगती है, और जब हम इन पांच तत्वों से उस पांच तत्वों में जाते हैं तो हमारी इस बॉडी में सवेरे सवेरे जो हम छठे महातत्वों की शक्ति ग्रहण करते हैं, तो वो ग्रहण की हुई शक्ति भी उन तत्वों को सत्व प्रधान बनाने का कार्य करती है। क्योंकि बॉडी अभी साधारण नहीं है, ये पहले वाली बॉडी थोड़ी नहीं है, अभी बॉडी तो बदल दी है, दिन हर सेकंड ही बॉडी बदल रही है, और विशेषकर हमारी ब्राह्मणों की बॉडी तो इसलिए अलग से बदल रही है क्योंकि हम सवेरे मेडिटेशन जो करते हैं, वो संकल्प कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, ब्रह्मांड से आ रहे हैं वो संकल्प, तो वो संकल्प उस प्रकृति को जब सहयोग करेंगे तो वो प्रकृति भी हमको सहयोग करेगी, और उस प्रकृति में जाने से फिर संसार की जो प्रकृति के तत्व हैं, देह के हैं, संबंध जो हैं, उनको भूलना बहुत सहज होगा। तो एकांत में जाना भी हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, उसमें हम पांच तत्वों को साकार दे सकते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। धरती पर चल रहे हैं, चलते चलते हम सोचें कि मेरे से पवित्रता की किरणें निकली हैं, निरंतर मुझे आत्मा से, मुझे फरिश्ते से पवित्रता की साकार इस धरती में समाती जा रही है। आकाश में हम आकाश मार्ग में गमन कर रहे हैं, फरिश्ता काया में वो हम अनुभव कर सकते हैं। सागर के नीचे चले जाएं, डूब जाएं अंदर में, किसी को दिखेगा नहीं अंदर कौन बैठा हो, अंदर बैठ के योग करें मस्त एकदम बढ़िया, कुछ भी हो वो तो खाएगा नहीं कुछ, वो तो और ही अनुभव करेंगे, ये कौन आ गया हमारे अंदर एक प्राणी अलग से ही, तो वो भी अनुभव करेंगे सागर के अंदर में, नए नए प्रयोग कर सकते हैं, मछलियाँ आएंगी देखेंगी ये कौन सी बड़ी मछली आ गई है तो ये रमणीकता भी हो जाएगी उसमें योग में, क्योंकि योग में नवीनता चाहिए। अगर एक ही डर्रे पर चलते जाएंगे तो वो सुस्ती का आलम हमारे में पैदा हो सकता है, तो इसलिए एकांत में भी बहुत प्रकार के योग का हम अनुभव कर सकेंगे। ये कितना हो गया, पांचवा। छठा कौन सा है, ऑफिस योगा। बाबा ने आज मुरली में जिक्र किया, दफ्तर में बच्चे बैठते हैं तो टाइम मिलता है तो बाप की याद में बैठ जाते हैं, जब ऑफिसर आता है तो देखता है ये तो कहीं गुम हो गए हैं, कोई कोई बच्चे आँखें खोल कर बैठते हैं, कोई बच्चे आँखें बंद कर लेते हैं, तो तुम बच्चों को ऑफिस में बैठ के भी जब भी मौका मिले तो एकदम शरीर से गायब हो जाना, अशरीरीपन का अनुभव करना है, आंखें बंद करके बैठना खतरा होता है, क्योंकि ऑफिस में हाँ अगर हमारा पेट साफ है, बिल्कुल हम हल्के अच्छे शुद्ध विचार चल रहे हैं तब तो ठीक रहता है। अगर पेट साफ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत हमारे संकल्पों का सीधा असर सीधे पेट से जुड़े हुए हैं, अगर हमने भारी भोजन कर लिया है तो संकल्प चलते ही नहीं है, वो योग हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं चलता है। तो ऑफिस में बैठे हुए हमको खुली आंखों से बैठना, पहली बात जुटका नहीं खाना है, क्योंकि जो नया व्यक्ति आता ना जब हम याद में बैठते तो हमारी आंखों की तरफ ही उसकी ध्यान होता है, अगर हम आंखें बंद करके ना तो सामने वाला भी आंखें पहले तो बंद कर लेगा लेकिन बीच बीच में देखता रहता है, वो हमने केंद्र उसका अनुभव किया हुआ है तो सामने वाला महसूस करता है कि क्या कर रहा है, क्या कहाँ इसका ध्यान लग रहा है। तो ऑफिस में बैठते भी हमको ऐसे बैठना, फिर सामने अगर आते हैं कोई भी ऑफिस में जब हम योग में नहीं है तो सामने वाले को हम आत्मिक दृष्टि से देखें, वो भी एक योग में हमारा सहायक कदम हो जाएगा। अच्छा उससे अगर हम बातचीत करते हैं तो वो पूरी आत्मीयता के साथ उसको कुछ महसूस कराने का हमारा भाव होना चाहिए, अच्छा महसूस कराने का, कुछ देने का भाव होना चाहिए। तो ऑफिस में भी हमारा ऑफिस योग जो है उस पर भी अगर हम अटेंशन रखेंगे तो हमारे जीवन में एक नया प्रयोग हो जाएगा ये भी। हाँ बहुत सारी बातें हैं जो, क्योंकि हर कर्म के साथ हमको इस योग को जोड़ना है, सीढ़ी उतर रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी उतरते क्या सोच रहे हैं, हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं और चढ़ते समय अभी हम जंप मार रहे हैं ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हम फाइल खोल रहे हैं तो मैं अपनी फाइल का फाइनल कर रहा हूँ, इसमें कौन कौन से हिसाब किताब के कागज रहे हूँ उसको कौन सा चुक्त कर रहा हूँ, अगर मैंने कलम पकड़ रही है तो हमारे भाग्य की कलम है, इस रेखा को मैं किधर ले जा रहा हूँ, माइनस में या प्लस में या बिंदु कहाँ लगा रहा हूँ, तो ये चीज़ें हर बात के साथ हम इस ज्ञान को जोड़ सकते हैं। तो ये कौन सा योगा हो गया, ऑफिस योगा। तो इस ऑफिस योगा में टॉकिंग योगा भी आ गया और दृष्टि योगा भी आ गया, इसमें वेटिंग योगा, सीइंग देखने वाला योगा भी आ गया। तो ये हो गया ऑफिस योगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप योगा। तो इस मुरली में बाबा ने कहा ये जो देह के संबंध है बहुत बड़ी इनकी जाल है, मकड़ी की तरह, चाचा काका मामा गुरु गोसाई ये सब जाल है, लेकिन इन संबंधों को हमको जो योग में लाना है तो उसके लिए बाबा ने कहा जैसे कन्या को याद किया है, तो कन्या की सगाई होती है तो पति परमेश्वर हो जाता है, तो हमारी सगाई तो हो चुकी है सबकी, तो हमारा परमेश्वर ही पति कौन है, ऊपर वाला ही है, तो हम हैं सब ब्राइड्स, तुम हो ब्राइड ग्रूम्स, तुम हो आशिक, बाबा ने मुरली में कहा, और वो तुम हो एक माशू के, और बाप टीचर सतगुरु, आशीष तो सब संबंधों से याद करते ही रहता है, तो आशिक भाई, इनका नाम आशिक भाई। तो ये है कि भिन्न भिन्न संबंधों से हम बाबा को याद करें तो वो भी एक बहुत अच्छी, जैसे आजकल ये जो चल रहा है तो हम एक नया इसमें जोड़ सकते हैं कि बाबा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है ना, तो वो सुप्रीम साइंटिस्ट है, हमको देख रहा है आसपास हमारे घूम रहा है कि किस तरीके से अपने जीवन को प्रयोगशाला में तब्दील कर रहे हैं, तो ये एक संबंधों से हम बाबा को अनुभव कर सकते हैं। तो ये होगा रिलेशनशिप योगा। नेक्स्ट है मीटिंग योगा। बाबा ने कहा आज की मुरली में है कि सबसे अच्छा जो बच्चे सन्मुख मिलने आते वो है फर्स्ट क्लास में, जब जो सन्मुख मिलते हैं, सेकंड है टेप और थर्ड है मुरली। तो हमको तीनों अनुभव करने हैं, ये हम तो अभी सन्मुख मिलते ही हैं, अब बाबा तो चले गए, वैसे तो आजकल बाबा जगह जगह आ भी रहे हैं लेकिन हमको अपने सामने आह्वान करना, ऐसे संसार में सोचते हैं कि चले गए, हाँ लेकिन मैं वही आप यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमको अनुभव करना है कि बाबा हमारे सामने बैठा हो, आह्वान। वैसे इस मुरली में बाबा ने कहा बाबा का आह्वान नहीं करना है, आज की मुरली में उसको अनुभव करना है, आह्वान क्यों करें, अर्थात हम भेज रहे हैं बार बार, आह्वान तो इसलिए किया जाता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है इट मीन्स कि हमने उसको जुदा किया हुआ अपने से, तो हमको महसूस करना है तुम तो यहीं कहीं मेरे आसपास बाबा नज़र नहीं आते हुए, बाजू के कमरे या बाजू में बैठे हुए, कमरा भी फिर भी दीवार है बीच में उसमें, तो बाजू में बैठे हुए हैं, वो दूरियां समाप्त तो हो जानी चाहिए, हाँ जी हाँ बाबा मुझे देख रहे हैं, विश्व रत्न दादाजी कहते हैं बाबा मुझे देख रहे हैं, जैसे वो एक CCTV कैमरे की तरह है, तो हमेशा मुझे वो वाच कर रहा है, देख रहा है मेरे हर गतिविधि पर उसकी नज़र है, तो वो हम रिलेशनशिप के हिसाब से भी उसको देख सकते हैं। कौन सा योग चल रहा है, मीटिंग योग है, मीटिंग योग, तो हमारी आपस में क्या क्या मीटिंग चल रही है उसको भी हम अनुभव कर सकते हैं, और नेक्स्ट है वॉकिंग योगा। तो वॉकिंग करते इसमें तो पहले एक आ गया, उसमें जिक्र भी किया, लेकिन फिर भी वॉकिंग करते इसमें हम उसको साथ में लेकर चले कि, और वॉकिंग करते इसमें हमेशा हम अकेले होना चाहिए। अगर दो भी होते हैं तो हमारी बात कौन सी होनी चाहिए? वैसे तो कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी अब कभी लंबी वॉकिंग पर निकलते हैं ऐसे वैसे स्थान पर जहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ भी हम ध्यान रखें कि कौन सी बात कर रहे हैं, या थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। वैसे तो अकेले चले तो बहुत बेस्ट रहता है अकेले। और वॉकिंग करते समय हम पहले से अपने को लक्ष्य दे के रखें कि इतने हम आधे घंटे में जाएंगे या पौने घंटे में जाएंगे, तो इस समय हमको करना क्या है। उसमें हम मुरली का चिंतन कर सकते हैं, जो भी जैसे यहाँ क्लास होती है उसको बार बार रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, या सवेरे सोचिए मेडिटेशन में क्या अनुभव किया था, शाम को हमको क्या अनुभव करना है, मुरली क्लास में हमने क्या सुना है। मन ही मन अगर उसको चलाते रहेंगे और हमारे में कौन सी कमी है जिनको हम निकालना है, तो भी एक पुरुषार्थ में नवीनता आ जाएगी। तो हमको ये वॉकिंग करते भी नए नए प्रयोग करने हैं। और नेक्स्ट है लास्ट कौन सा है, राइटिंग योगा। राइटिंग योगा सब सर्वश्रेष्ठ योगा है ये। अगर हमारा बैठ के योग नहीं लगता तो बाबा को लिखो पत्र। तो राइटिंग योगा जो ना मन बुद्धि पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, एकदम पूरा एकाग्र हो जाता है। और उस समय हमने देखा है अगर आंखों में किसी को आंसू नहीं आते तो आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो लिखने की कला विकसित धीरे धीरे होती है, तुरंत नहीं होती है। जैसे हम लौकिक में पत्र लिखते हैं किसी को जो हमारा बहुत प्रियजन होता है, उसी तरह हम भगवान को ही पत्र लिखें, लेटर लिखें, उसको लेटर लिखें तो बड़े प्यार से लिखें। क्या कैसे लिखेंगे, मेरे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे शुरू, मेरे परम प्रिय पति परमेश्वर जी, फिर आगे शुरू कर देंगे, मैं आपकी पत्नी मधुबन की लाइब्रेरी से आपको एक मधुर पत्र लिख रही हूँ, मेरे मन की व्यथा इस तरह से है, फिर आगे चालू कर देना। तो ये पत्र लिखना ना बहुत अच्छी कला है। तो ये राइटिंग योग है सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योग है। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं, लेकिन हमने इन 10 योगा पर चिंतन किया। तो सबसे पहला था ब्लेसिंग योगा, और उसमें 12 चीज़ें थी, वो भी हम सारे दिन में रिवाइज करें, उसका अनुभव करें। हाँ जी हाँ, वो 12 जो टाइटल थे, तो 12 टाइटल में मैं स्पिरिचुअल लाइट हाउस हूँ, मास्टर बीज रूप हूँ, बाप समान विश्व कल्याणकारी हूँ, सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मास्टर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता हूँ, अशरीरी हूँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी हूँ, बेहद का वैरागी हूँ, एकांतवासी हूँ, एक बाप को ही अपना संसार बनाने वाली विशेष आत्मा हूँ। तो ये टाइटल हैं। तो ये ब्लेसिंग योगा, ये हम बार बार सारे दिन में एक्सपीरियंस करें, उसका अनुभव करें, महसूसता करें, उसकी अनुभूति करें कि बाबा का बरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है और इन बरदानों की निरंतर बरसात होती जा रही है और मेरे जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है, महसूस करना ये। और दूसरा था दृष्टि योगा। तो दृष्टि में हमने देखा कि स्वयं के स्वरूप से ही दृष्टि लेनी है, स्वयं का संपूर्ण रूप, चाहे वो फरिश्ता रूप है चाहे देवता रूप है। और इसी में दूसरी बात देखी थी कि बाबा से दृष्टि लेनी है, जो निष्ठा की बात कही गई। और इसमें दूसरी बात देखी थी कि पूर्वजों से दृष्टि लेनी है, या पूर्वज के बीच में मैं बैठा हूँ या पूर्वज हमारे घर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनको इन्वॉल्व कर देना बीच में। हाँ, इसलिए बीच में का पूर्वजों की हिस्ट्री पढ़ना बहुत अनिवार्य है। बहुत फास्ट नए भी फास्ट जा सकते हैं अगर उस टाइम को पूरा यूज़ करें तो। वो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में स्वतः आ जाते हैं, उनके पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे सामने का रास्ता दिख गया, हमको इस रास्ते पर चलना है। अगर हम बिना रास्ते देखे जंगल में घुस के तो भटकेंगे। अगर हमको पहले से रास्ता पता चल गया कि इधर इधर से जाना, उस रास्ते पर कई सारे लोग गए हुए हैं, तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री उन्होंने रास्ता निर्माण किया हुआ है, 85 साल की तपस्या का बल उनकी आंखों में समाया हुआ है। अगर उनसे दृष्टि लेंगे तो हमारे जीवन का महान परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से पूर्वों से दृष्टि लेनी है। तो तीसरा दूसरा हो गया दृष्टि होगा, तीसरा है डेथ होगा, मृत्यु। तो वो भी हमको देखना है, बता दिया कैसे करना है। और चौथा है ईटिंग योगा, और पांचवा है एकांत योगा, और छठा है ऑफिस योगा, सातवां रिलेशनशिप योगा, वॉकिंग योगा, मीटिंग योगा, वॉकिंग योगा और राइटिंग योगा। ऐसे बहुत सारे योगा है, बाथिंग योगा, जो भी ये कर सकते हैं आगे। तो 10 प्रकार के योग हैं। तो हमें अपने जीवन को राजयोग की प्रयोगशाला बनाने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाते हुए इस जीवन में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करने हैं, आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। ओम शांति।